खुदा के हजूर झुक जाएंगे और उसके कलाम की रहनुमाई को मांगेंगे कि खुदा बाप तेरा कलाम हमारा हौसला बढ़ाता है। जैसे वो बहन कैद में है, उस बहन के खुदावंद हौसले को, उस बहन को मजबूती दे, उस बहन को हौसला और कुव्वत दे, और उसकी तन्हाइयों में तू उसका खुदा बन, उसकी अंधेर कोठरियों में तू उसका महाफ़ज़ बन। जैसे हमने गाया कि तू का मौत के साया की वादी में से हमारा गुजर हो, हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। सो आए हम खुदा के हजूर उससे मांगे। हम सब दुआ करेंगे कि खुदा बापा जो भी कलाम हम तेरे कलाम में से सीखें, हम सब की तरबियत, नसीहत और हौसला अफजाई के लिए हो। हम सब तेरे जलाल, तेरी गवाही और तेरी बुजुर्गी में बढ़ते जाएं और हमारी जिंदगियों में तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सब अपने लबों को खोलें। जिस मिनट आप अपने लबों को खोलना शुरू करेंगे, खुदा पाक रूह आपकी मदद करेगा बोलने में। हालेलुया। खुदावंद तेरी तारीफ हो आज के कलाम के लिए, तेरा शुक्र हो आज की मफीद बातों के लिए। मेरे लबों का रखवाला बन, मेरे कानों का रखवाला बन, मेरे दिल का रखवाला बन। मेरे दिमाग पर तेरा कब्जा, तेरा कंट्रोल चाहता हूँ, ताकि जो कुछ बोलूँ, जो कुछ सुनूँ खुदावंद, हम सब की तरबियत और नसीहत के लिए हो और तेरा बेटा खुदावंद यीशु मसीह इज्जत और जलाल पाए और हम सब कम होते जाएं और तू बढ़ता जाए। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। मेरे साथ हवाला निकालें, फिलिपियों के नाम पालूस रसूल का खत, कल का हवाला जो हमने पढ़ा था, फिलिपियों 4 बाप उसकी 12 आयत को भाई ताहिर पढ़ेंगे। फिलिपियों 4 बाप उसकी 13वीं आयत को भाई रिजेश पढ़ेंगे। सब गौर से सुने। फिलिपियों 4:13-12 आयत भाई ताहर पढ़ेंगे, 4:12-13 आयत भाई रिजेश पढ़ेंगे।
हर एक बार और सब हालतों में मैंने स्थिर होना, भूखा रहना और बढ़ना जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता
आमीन
हूँ।
आमीन। यहाँ पर हमने जो कल बात सीखी थी कि पालूस रसूल जेल खाना में बंद है और उसने ये बात फिलिपी के शहर के रहने वाले ईमानदारों को लिखी कि मैं हर हालात में पस होना यानी के फरोतन बनना भी जानता हूँ, बढ़ना यानी के तरक्की पाना भी जानता हूँ, और फिर कहता है भूखा रहना और फिर घटना मैंने सीखा है हर हालात में। किस लिए उसने ये सीखा? कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये ताकत कौन सी है जिसके बारे में हमने कल सीखा था? रूहुल कुद्दस की कुदरत, रूहुल कुद्दस की ताकत, रूहुल कुद्दस का जोर। इसलिए मेरे साथ एक और हवाला निकालें, इफ़सियों 1 बाप उसकी 19वीं आयत। इफ़सियों 1 बाप उसकी 19वीं आयत ये हम सब पढ़ेंगे और सब कहेंगे। इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 1 बाप 19वीं आयत। और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक। यहां पर भी हम देखते हैं कि पालूस जो लफ्ज इस्तेमाल करता है कुदरत और कुव्वत, और वहां पर हमने जो लफ्ज देखा कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, यानी कि वो ताकत, वो कुदरत जो खुदा की कुदरत है, उसके बायस मैं सब हालातों में से गुजर सकता हूं। और यही वो कुदरत है जो उस बहन को जो जेल में बंद है उसे बर्दाश्त की कुव्वत दे रही है। सताए जाने में हर तरह की बदसलूकी का सामना करने की उसे कुव्वत दे रही है। और यही कुदरत आपको संभाल सकती है। आपके कैसे भी हालात हैं, माली हालात खराब हैं, आपकी जिंदगी में खुदा का पाक रू ये इत्मीनान आपको दे सकता है। रूहानी मसला है, बदरूहों पर किसी भी और किसी भी मसले के आपको आपको सामना है, खुदा का पाक रू आपको संभाल सकता है, क्योंकि ये कुदरत खुदा ने अपने लोगों के लिए मददगार के तौर पर दी है। सो आज हम उस कहानी को सीखेंगे जो हवाला हमने पढ़ा। पालूस कहता है कि मैं अपने ताकत बख्शने वाले में सब कुछ कर सकता हूँ, तो उसकी छोटी सी एक झलक देखेंगे जब पालूस और उसका हम सफ़र, उसका जानशी कह सकते हैं, हम खिदमत कह सकते हैं, जिसका नाम सिलास था, दोनों फिलिपी शहर में गए। फिलिपी शहर में यानी के फिलिपियों के शहर में गए, जहां पर फिलिपी रहते थे। ये रूमियों का शहर था, बहुत मशहूर और अहम शहर था। इसमें बुत परस्ती पाई जाती थी, इसमें लोगों के देवियों और देवताओं के मंदिर बने थे। रूमी हुकूमत के लोग देवताओं को मानते थे क्योंकि वो यूनानी थे। तो यहां पर हम देखेंगे, मेरे साथ इस हवाला को निकालें, इमाल की किताब उसका 16वां बाप। 16वां बाप यहाँ पर हम जब देखते हैं तो हमें बहुत से वाक्यात मिलते हैं। पालूस ने रोया देखी है कि कोई उसे यूनानी कह रहा है, कि मकतूनी ना मकतूनी कह रहा है, मकदूनी आदमी कह रहा है कि तू आकर हमारे शहर में मना दी कर, हमें तेरी ज़रूरत है, वो आके हमारे पास आ। सो ये 16वां बाप है, इसकी हम 16वीं आयत से पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम 16वीं आयत से पढ़ें, हमें 15वीं और 14वीं आयत में जिक्र मिलता है एक औरत का जिसका नाम लुद्दा है। वो किरमिज बेचती थी, किरमिज यानी कि ये किरमिजी रंग के कपड़े या किरमिजी रंग था, जो उस वक्त बहुत कीमती था। और इस औरत का जो कारोबार था रंग बेचना और फिर किरमिजी रंग के कपड़े बनाकर बेचना, और ये उस दौर के लोग वही लोग पहनते थे जो बहुत अमीर हैं, जैसे आज हमारे दौर में भी बहुत ज़्यादा कपड़ा मशहूर है। कौन सी किस्म का है? बोस्की का कपड़ा मशहूर है, उसके बाद और कौन सा कपड़ा है? करंडी, उसके बाद और कौन सा? लठा। सो ये देख सकते हैं कि ये कपड़े मशहूर है, जब कोई पहनता है तो कहते हैं कि भाई ये खाते पीते घर से है। सो ये औरत क्या करती थी? किरमजी रंग के कपड़े बेचती थी, और जो सिर्फ अमीर लोग पहनते थे। इसने खुदावंद यीशु मसीह का कलाम सुना तो खुदा ने उसके दिल की आंखों को खोला, और उसने तोबा की, और उसने अपने घराने समेत क्या लिया? बपतिस्मा लिया। फिर 16वीं आयत में देखते हैं, जब पालूस रसूल ये सब कुछ कर चुका तो 16वीं आयत से पढ़ेंगे। सब गौर से सुने। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान रू थी। वो गैब गोई से अपने मालक के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पालूस और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पालूस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। ये वो वाक्या है जहाँ पर हम देखते हैं कि पालूस रसूल और सलास खिदमत के लिए जा रहे हैं, लेकिन बदरू पुकार पकार कर कहती है, जिसे कह सकते हैं शोर डालती है, ये खुदा ताला के कादम हैं, खुदा के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। और ये गैबदान रू, उस वक्त वहां पर एक मंदिर था जिसकी पूजा के दौरान ये एक सांप था, अजदहा की रूह से कहा गया है, शैतान की रूह कहा गया है, जो उस वक्त उस दौर में लोगों को हाल बताती थी, उनके मुस्तकबिल के बारे में बताती थी। जैसे आज भी बहुत दफ़ा लोग अपना मुस्तकबिल दिखाने के लिए हाथ की लकीरों का हिसाब लगाते हैं कि ये क्या होगा। ये औरत जो बदरू से भरी हुई थी अपने मालकों के लिए रुपये इकट्ठे करती थी, और लोगों को बताती थी कि आपके आगने वाले हफ्ते में, साल में, जिंदगी में क्या होगा। और ये किसकी रूह थी? अबलीस की, अजदहा की, उस पुराने सांप की। तो यहां पर हम देखते हैं, लेकिन पालूस ने उनको डांटा। इसी वजह से क्या हुआ आगे चलकर हम देखेंगे। 19वीं आयत, जब उसके मालक ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही, तो पालूस और सलास को पकड़कर हाकमों के पास चौक में खींच कर ले गए। एओ मालका जिदे ले ये लड़की का मकार दीसी। पालूस ने जदों उन्हें डांटिया, उन्हें क्या साड़ी कमाई तो इन्होंने भेड़ा भेड़ा बा दिता। तो क्या हुआ, उस मालक ने पालूस और सलास के लिए क्या की? उनके खिलाफ दरख्वास्त दी, उनके खिलाफ फौजियों को, हाकमों को जो उस वक्त थे, क्या किया? शिकायत की। 20वीं आयत में देखते हैं, और उन्होंने फौजदारी के हाकमों के आगे और उन्हें फौजदारी के हाकमों के आगे ले जाकर कहा, ये आदमी जो यहूदी है हमारे शहर में बड़ी खलबड़ी डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं, और आम लोग भी मुत्तफिक होकर उनके मुखालफत पर आमादा हुए, और फौजदारी के हाकमों ने उन्हें उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और बैंत लगवाने का हुक्म दिया। तो यहां पर उनको ये सजा मिली है क्योंकि उनकी कमाई का जरिया बंद हो गया। आज भी आप जब सच्चाई की बात करेंगे तो बहुत से लोग बगैर किसी चीज को जाने, बगैर किसी बात को जाने, ऐसे ही कहेंगे, हा ला 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 ला, जी 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 सच है, सच है, सच है। ऐसा ही होता ना, लड़ाई किसी की होती है, पीछे 20-25 ऐसे ही किसी ना किसी को मारना शुरू कर देते हैं। बाजार में अक्सर होता है, चोर एक का होता है, सारा शहर ही उसे मारना शुरू कर देता है। तो यहां पर क्या हुआ, पालूस ने जब उनकी कमाई का जरिया जाता रहा तो दूसरे लोग भी राजी हो गए, मुत्तफिक हो गए, हाँ हाँ ठीक है, इनको मारना चाहिए। सो पालूस और सिलास को डंडे बजे, जिसे कहते हैं बैंत लगवाए गए, सोटियां, ये बहुत जबरदस्त किस्म की सोटी होती थी जो जिस्म से चमड़ी को उधेड़ देती थी, ये रोमियो की सोटी थी। तो आगे देखते हैं 23वीं आयत, और बहुत से बैंत लगवा कर उन्हें कैद में डाला और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगाहबानी करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव काट में ठोक दिए। ये उस वक्त का क्या था, तरीकाकार था। आपने देखा होगा कि फिल्मों में वो लकड़ी के बने होते हैं, क्या उसे कहते हैं, जैसे हम बहुत दफा जो कट्टे होते हैं उनके गले में पावा डालते हैं ताकि वो भागे ना, वो उनके पांव दो सुराख बनाकर उसमें और फिर हाथ और क्या कहते हैं कि गर्दन को लगा देते थे ताकि वो भाग ना सके। सो पालूस और सिलास के पांव में उन्होंने क्या किया, लकड़ी के वो ना लगा दिए, जैसे कहते हैं कि हथकड़ी होती है, बेड़ियां भी कह सकते हैं, वहां पर उनके पैरों को ठोक दिया ताकि वो भागे ना। तो आगे देखते हैं क्या हुआ, पालूस और सलास परेशान बैठे हैं, ऐसा हुआ है नहीं, 25वीं आयत में देखेंगे, आधी रात के करीब पालूस और सलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भौंचाल आया, यहां तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा के कैदी भाग गए हैं, बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। ये वही कुदरत कर रही है जिसके बारे में हम सीख रहे हैं कि पालूस और सिलास पकड़े गए, उसके पीछे एक वजह थी। पालूस और सलास जेल में डाले गए, मारे गए, बेइज्जत किए गए, उसके पीछे एक वजह थी, इस फिलिप्पी दरोगा की निजात का बायस। आज अगर आप भी किसी तरह की मुसीबत में, परेशानी में, कोई भी हालात की बेड़ियां आपको कैद किए हुए हैं, कोई भी हालात है आप जानते हैं, उसके पीछे खुदा का कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई मकसद है। और वो आपको दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदा मुझे बता कि मैं क्यों इस हालात में से गुज़र रहा हूँ, गुज़र रही हूँ, तेरा इसके पीछे क्या मकसद है। तो यहाँ पर पालूस और सलास खुदा की हमद गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, प्रस्तुति कर रहे हैं। आसमान से क्या हुआ? उसका जलाल ज़ाहर हुआ और बड़ा भौंचाल आया, पूरा कैद खाना खुल गया, कैदी कुछ भाग गए। और यहाँ पर दरोगा जो परेशान है वो तलवार खींचकर अपने आप को मारना चाहता है, लेकिन आगे से आवाज़ क्या आई? 28वीं आयत, पालूस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने तहीं नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पालूस और सलास के आगे घिर आगे खड़ा आगे गिर गया। इधर सुनो बेटा, और कांपता हुआ, हाँ जी एक मिनट में पीछे ही हूँ, और कांपता हुआ पालूस और सिलास के आगे घिरा। और 29वीं आयत, और उन्हें बाहर ला कर कहा, ऐ साहिबो मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? ये उसने सवाल किया और उन्होंने जवाब दिया कि खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और आगे हम सारी स्टोरी को देखते हैं क्या हुआ। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया, और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदावंद पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। ये बात हुई किस तरह? के पालूस ने खुदा की आवाज़ को सुना, वो फिलिपी शहर को गया, वहाँ पर बदरू को डांटा और उस बदरू के मालक ने उनकी शिकायत की, वो चौक में पिटवाए गए, उनको बेइज्जत किया गया, कैद में डाल दिए गए और फिर आधी रात के दौरान भौंचाल आया। और जिस दरोगा ने देखा कि ये कैसा अजीब काम है, उसने पूछा कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? तो पालूस ने सादा सा जवाब दिया, खुदावंद यीशु पर ईमान ला। आज आपकी जिंदगी में जो भी मसला मसाइल है, उसे मत ऐसे कहें कि खुदा तूने मुझे क्यों इसमें डाला। उस मसले मसाइल में कहने की ज़रूरत है कि खुदा इसमें तेरी मर्जी मेरे लिए क्या है। क्यों के लफ्ज़ को क्या पर बदल दें, तब आप अपनी ज़िंदगी में मौजज़ा, तब आप अपनी ज़िंदगी में अजीब काम, तब आपकी ज़िंदगी में गवाही, किसी ना किसी की रहाई, किसी ना किसी की निजात, किसी ना किसी के लिए बरकत का बाज ठहरेंगे। लेकिन दुख में से गुजरना ज़रूर है और ये अपने आप से हम नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वही ताकत जिसके बारे में पालूस ने कहा है। सब कहेंगे फिलिपियों 4:13, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है, दिल को बड़ा करने की ज़रूरत है, परेशानी में खुदा से दुआ करने की ज़रूरत है कि तू मेरी फ़िक्रों को अपने ऊपर ले ले, तू मेरे माली हालात को दुरुस्त कर, तू मेरे दुश्मनों के आगर मेरे लिए दस्तरखान बिछा, तू मेरे लिए मेरे आगे जाकर मेरा रास्ता तैयार कर, तू मेरा मुहाफिज है। खुदा से बात करने की ज़रूरत है, खुदा से बात करने की ज़रूरत है, ना कि मुश्किल है, परेशानी है, खामोशी से बैठ जाने की, बल्कि पालूस और सिलास की तरह हमद के गीत, खुदावंद की प्रस्तुति करने की ज़रूरत है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है, उसके कलाम को, उसके वादों को याद रखने की ज़रूरत है। और पालूस ने सलोस ने ऐसा ही किया और खुदा ने उनको रहाई दी। सो आए हम सब खुदा के हजूर झुके हैं, वो आपको भी रहाई दे सकता है, वो जोर आपके लिए भी आज मौजूद है, वो जोर आपके लिए भी आज आपके अंदर है, आपके साथ है, आपके आगे है, आपके ऊपर है, आपके पीछे है, वो आपको घेरे हुए है, क्योंकि वो खुदा हर जगह मौजूद है। हम सब दुआ करेंगे आज आपकी जो भी मुश्किल है, जो भी परेशानी है, जो भी आपका मसला है, जो की मुसीबतों की बेड़ियां आपके गिर्द लगी हुई हैं, किस किस्म की भी फिक्र के कैद खाना में हैं, खुदावन से कहे कि खुदा बाप तू मेरी फिक्रों की उस दीवार को ढा सकता है, खुदा बाप तू मेरी मुसीबतों की बेड़ियों को दूर कर सकता है, और खुदावन तू मुझे का मौत के साया की वादी में से गुजर हो तू मुझे संभाल सकता है, क्योंकि तूने मिस्रियों को निकाला, तूने दानियल को निकाला, तूने यूसुफ को संभाला, तूने खुदावन खुदा बहुत से दूसरे लोगों को खुदावन खुदा रहाई दी, और तेरी पाक मर्जी के मुताबिक मुझे भी रहाई दे। हालेलुया, खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरे नाम की तारीफ हो, खुदावन तेरे नाम की हमद हो, तेरा नाम इज्जत और जलाल।